दूसरी परंपरा की खोज 1930 की 7 नवंबर को पंडित जी शांति निकेतन पहुंचे और 8 नवंबर से उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। इसे वे द्विजत्व प्राप्ति का दिन कहते थे। वैसे द्विज तो वे पहले से ही थे, उपनयन संस्कार हुआ ही होगा, लेकिन अपना दूसरा जन्म वे शांति निकेतन पहुंचने के दिन को ही मानते थे। जन्मदिन मनाते तो उन्हें कभी नहीं देखा गया, लेकिन द्विजत्व प्राप्ति का दिन वे बड़ी निष्ठा से मनाते थे। किस अर्थ में यह द्विजत्व प्राप्ति थी, इसका कुछ अंदाजा एक घटना से लग सकता है। शांति निकेतन में एक विधवा अपनी कन्या का विवाह हिंदू विधि से करना चाहती थी। किसी ने कह दिया कि नांदी श्राद्ध विधवा नहीं कर सकती। गुरुदेव ने नए नए आए काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को बुलवा भेजा, पूछा, हिंदू का हजारों वर्षों का इतिहास है, क्या उसमें पहली बार यह घटना हो रही है? पहले भी तो कभी ऐसी स्थिति आई होगी। पंडित जी घर आए, स्मृति ग्रंथों की छानबीन की, देखा कि पूर्व पक्ष में ऐसे बहुत से वचन हैं जो विधवा के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं, लेकिन वचनों की संगति लगाते समय निष्कर्ष रूप में यही कहा गया है कि विधवा को ऐसा अधिकार नहीं है। जाकर गुरुदेव को बताया तो हंसकर बोले, क्या पूर्व पक्ष के वे ऋषि कुछ कम पूज्य हैं जिनका खंडन उत्तर पक्ष में किया गया है? इस प्रश्न ने पंडित जी को झकझोर दिया। परंपरा क्या उत्तर पक्षी ही है, पूर्व पक्षी नहीं? जिस परंपरा को अब तक वे अखंड समझते आ रहे थे, देखते देखते शिव धनुष के समान खंड खंड हो गई। लगा कि परंपरा और भी हो सकती है। एक तरह से यह इतिहास बोध का उदय था। इसके बाद तो शांति निकेतन में रहते हुए अपनी परंपरा के बारे में धीरे धीरे और भी बहुत सी बातें मालूम हुई। शांति निकेतन न आते तो शायद रविन्द्रनाथ के प्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष में इतिहास की धारा 1912 पर दृष्टि न पड़ती। उस निबंध में ऐसी अनेक स्थापनाएं हैं जिनका पल्लवन द्विवेदी जी की कीर्तियों में मिलता है। एक स्थापना तो यही है कि किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि अनार्यों ने हमें कुछ नहीं दिया। वास्तव में प्राचीन द्रविड़ लोग सभ्यता की दृष्टि से हीन नहीं थे। उनके सहयोग से हिंदू सभ्यता को रूप वैचित्र और रस गांभीर्य मिला। द्रविड़ तत्वज्ञानी नहीं थे, पर उनके पास कल्पना शक्ति थी। वे संगीत और वास्तुकला में कुशल थे। सभी कला विधाओं में वे निपुण थे। द्विवेदी जी ने इस रास्ते चलकर गंधर्वों, यक्षों और नागों जैसी आर्येतर जातियों के कलात्मक अवदान की खोज की है। रविन्द्रनाथ की ही यह अवधारणा थी कि वैष्णव धर्म में एक ओर भगवत गीता का विशुद्ध उच्च धर्म तत्व है, तो दूसरी ओर अनार्य ग्वालों में प्रचलित देवलीला की विचित्र कहानियां भी उसमें सम्मिलित हैं। वैष्णव धर्म का आश्रय लेकर जो लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं आर्य समाज में प्रतिष्ठित हुई, उनमें प्रेम, सौंदर्य और यौवन की लीला है। प्रलय पिनाक के स्थान पर बांसुरी के स्वर है, भूत प्रेत के स्थान पर वहाँ गोपियों का विलास है, वहाँ वृंदावन का चीर वसंत और स्वर्गलोक का चीर ऐश्वर्य है। आभीर संप्रदाय प्रचलित कृष्ण कथा वैष्णव धर्म में घुल मिल गई। द्विवेदी जी की प्रथम कीर्ति सूर्य साहित्य का एक प्रेरणा स्रोत यह भी है। संभवतः यही दिशा दृष्टि उन्हें आभीर भाषा अपभ्रंश की ओर ले गई, जिस पर आगे चलकर उन्होंने काफी काम किया। इसी प्रकार कबीर की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाले भी रविन्द्रनाथ ही हैं। उसी निबंध में रविन्द्रनाथ ने यह कहा था, कबीर की जवानी और रचनाओं में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि उन्होंने भारत के समस्त बाह्य आवर्जना का अतिक्रमण करते हुए उसके अंतःकरण की श्रेष्ठ सामग्री को ही सत्य साधना समझकर उपलब्ध किया था। लोकाचार, शास्त्र विधि और अभ्यास के रुद्ध द्वार पर आघात करके उन्होंने भारत को जगाने का प्रयास किया। द्विवेदी जी का कबीर सिर्फ इतना ही नहीं है, किंतु रविंद्रनाथ की यह प्रेरणा पूरे ग्रंथ में अंतर्ध्वनित है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कालिदास के लालित्य में रुचि जागृत करने का श्रेय भी रविंद्रनाथ के लेखों को देना पड़ेगा। इस प्रकार द्विवेदी जी को भारतीय संस्कृति और साहित्य की परंपरा रविंद्रनाथ के माध्यम से मिली। यह ऋण उन्होंने स्वयं ही बार बार स्वीकार किया है, किंतु ऐसा लगता है कि यह ऋण जितना है उससे अधिक मान लिया गया है। वैसे इस शताब्दी का कौन उल्लेखनीय भारतीय लेखक है जो रविंद्रनाथ से कुछ न कुछ प्रेरित और प्रभावित नहीं है, किंतु इसके साथ यह भी सच है कि इस प्रेरणा और प्रभाव के रूप एक से नहीं है। द्विवेदी जी ने कम से कम हिंदी को रविंद्रनाथ की प्रेरणा से वह दिया जो उन्होंने उनसे पहले किसी को न दिया था। मिसाल के लिए कबीर का क्रांतिकारी रूप, छायावादी कवियों को रविंद्रनाथ में रहस्यवाद अधिक आकर्षक लगा था। शायद इसीलिए एक अरसे तक हिंदी में कबीर के रहस्यवाद की चर्चा होती रही। कबीर के माध्यम से जाति धर्म निरपेक्ष मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय तो द्विवेदी जी को है ही, एक प्रकार से यह दूसरी परंपरा है। शायद इसीलिए हिंदी का एक अच्छा खासा हिस्सा बहुत दिनों तक द्विवेदी जी को परंपरा बाह्य मानता रहा। सच कहे तो द्विवेदी जी उस तरह के हिंदी वाले थे भी नहीं। शांति निकेतन से उन्हें एक अखिल भारतीय व्यापक दृष्टि मिली थी, अखिल भारतीय भी और विश्व व्यापक भी। इस व्यापकता का एक ठोस आधार था भक्ति काव्य। भक्ति आंदोलन के अनुशीलन के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि हमारी भाषा का पुराना साहित्य प्रांतीय सीमाओं में बंधा नहीं है। आपको यदि हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है तो उसके पड़ोसी साहित्यों बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि के पुराने साहित्य लिखित और अलिखित को जाने बिना आप घाटे में रहेंगे। यही बात बंगला, उड़िया, मराठी आदि के पुराने साहित्य के बारे में भी ठीक है। हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अदृश्य काल विधाता के हाथों सी दिया गया है कि उसे प्रांतीय सीमाओं में बांधकर सोचा नहीं जा सकता। उसका एक टांका काशी में मिल गया तो दूसरा बंगला में, बंगाल में, तीसरा उड़ीसा में और चौथा महाराष्ट्र में मिलेगा, और पांचवा मालाबार या सिलोन में मिल जाए तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। कल्पलता पृष्ठ संख्या 198। इस प्रकार यह अखिल भारतीय दृष्टि अनुभव लब्ध थी, हवाई कल्पना मात्र नहीं। विश्व दृष्टि स्वयं शांति निकेतन के वातावरण में थी, जहाँ सिल्वा लेवी, विंटर निट्स जैसे यूरोपीय प्राची विद्याविद और स्ट्रेला क्रेमरिस जैसी की कल्पनाएं जगाई, क्रेमरिस जैसी कलाविद अध्यापन और शोध कर चुके हो, वह आश्रम यदि विश्व एक नीड़ की कल्पना जगाए तो कोई आश्चर्य नहीं। किंतु जैसा कि रविंद्रनाथ नामक ग्रंथ के लेखक कृष्ण कृपालानी ने लिखा है, इस चित्र विचित्र मधुचक्र में भनभनाहट अधिक थी, यह शायद यह कहना कठिन है। वातावरण निसंदेह स्फूर्ति प्रद था और महत्वपूर्ण वस्तु यह स्फूर्ति ही थी। संयोग से द्विवेदी जी के शांति निकेतन पहुंचने के बाद अगले वर्ष ही 1931 में कवि सोवियत देश चले गए और वहां से लौटने पर रूस की चिट्ठी नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। रविंद्रनाथ की इस पुस्तक ने लेखकों और बुद्धिजीवियों में समाजवाद की नई दुनिया के प्रति आकर्षण पैदा किया। द्विवेदी जी इससे अप्रभावित रह गए हो यह संभव है। हिंदी प्रदेश से दूर रहते हुए भी प्रगतिशील साहित्य आंदोलन की ओर उनके आकृष्ट होने का एक बड़ा कारण यह भी है। इसके अतिरिक्त एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि भी शांति निकेतन की देन मानी जा सकती है। द्विवेदी जी हिंदी के उन थोड़े से लेखकों में हैं जिन्होंने बहुत पहले इस सदी के चौथे दशक में ही भारत के लिए विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टि का महत्व स्वीकार कर लिया था। निश्चय ही इस विषय में रविंद्रनाथ की प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी जी के विपरीत रविंद्रनाथ उस समय जिस प्रकार विज्ञान की हिमायत कर रहे थे, द्विवेदी जी द्वारा कवि के पक्ष की स्वीकृति उल्लेखनीय घटना है। इसलिए मानव की जय यात्रा की चर्चा में प्रकृति पर मानव की विजय का वर्णन करते हुए वे अक्सर अपने रक्त में अजीब झंझनाहट का अनुभव करते हैं और इस वर्णन में पुनरुक्ति से भी नहीं डरते। आधुनिक युग की वैज्ञानिक प्रगति द्विवेदी जी के लिए एक सूचना मात्र नहीं बल्कि भाव बोध को निर्मित करने वाली सच्चाई है। इसलिए आधुनिकता भी उनके लिए एक नया फैशन नहीं बल्कि भाव बोध के स्तर की वस्तु है। काशी के एक संस्कृत पंडित के लिए यह आधुनिकता बोध कितने गहरे अंतः संघर्ष की प्रक्रिया रही होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वर्तमान के साथ अतीत की यह मुठभेड़ भारत के संदर्भ में और भी पेचीदा थी, क्योंकि इसमें उपनिवेशवादी पश्चिम के साथ विजित पूर्व की मुठभेड़ भी शामिल थी। किंतु यह देखकर प्रीतिकर आश्चर्य होता है कि द्विवेदी जी की दृष्टि एक क्षण के लिए भी इस अंतः संघर्ष में मोहासक्त नहीं हुई। वे स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं कि आधुनिक युग के मानवतावाद के साथ मध्य युग के उस मानवतावाद को भुला नहीं देना चाहिए, जिसमें कि किसी न किसी रूप में यह स्वीकार किया गया था कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और भगवान अपनी सर्वोत्तम लीलाओं का विस्तार नर रूप धारण करके ही करते हैं। नवीन मानवतावाद की सबसे बड़ी बात है उसकी ऐहिक दृष्टि और मनुष्य के मूल्य और महत्व की मर्यादा का बोध। विचार प्रवाह पृष्ठ संख्या 188। भक्ति काव्य के एक प्रेमी और प्रशंसक ने सामान्यतः ऐसी बात सुनने की आशा नहीं की जाती। पूर्व और पश्चिम की इस मुठभेड़ में जहां बहुतों की दृष्टि समूचे पश्चिम से मुड़कर पूर्वाभिमुख हो गई है, द्विवेदी जी वैसे भारत व्याकुल नहीं हुए। इसी प्रकार अतीत और वर्तमान की मुठभेड़ में भी उन्होंने अतीत में किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं खोजी। इतिहास उनके लिए एक शव था और उसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस शव साधना में उनकी दृष्टि के सम्मुख मनुष्य का भविष्य था। संभवतः इसका कारण है अपने लोक जीवन से उनका लगाव। इस दृष्टि से द्विवेदी जी और निराला में अद्भुत समानता है। निराला के बारे में जैसा कि कहा गया है कि बंगला के सांस्कृतिक जागरण से प्रेरणा लेते हुए भी निराला अपने जनपद के लोक जीवन से बहुत गहराई तक संबद्ध थे और उनके जीवन और साहित्य के बहुत से क्रांतिकारी स्रोत इस लोक जीवन से ही फूटे थे। इस प्रकार द्विवेदी जी के जीवन और साहित्य का क्रांतिकारी स्रोत स्वयं उनके अपने जनपद बलिया का लोक जीवन है। असल पूंजी यही है। शांति निकेतन ने उसे सिर्फ संस्कार दिया। विचार और वितर्क के गतिशील चिंतन अशोक के फूल के मेरी जन्मभूमि तथा कल्पलता के ठाकुर जी की बटोर शीर्षक निबंधों से द्विवेदी जी के अपने जनपदीय लगाव का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। किंतु उनकी जनपदीय पूंजी का पूरा पूरा एहसास तो उनके उपन्यासों से होता है। बाणभट्ट की आत्मकथा का नायक भट्टिनी को स्थानीय स्वर्ग से लेकर काशी जनपद से आगे पूर्व दिशा में ले जाता है वह द्विवेदी जी की अपनी ही जन्मभूमि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजधानी से निकलकर इस लोक भूमि में आते ही उपन्यास छोटे छोटे जीवंत चरित्रों से जगमगा उठता है और सौर भनद्र सुरहा ताल के वर्णन में लेखक की लेखनी जीवित हो जाती है। इसी प्रकार पुनर्नवा की मूल कथा भूमि तो स्वयं द्विवेदी जी की अपनी स्वीकृति के अनुसार ही बलिया की है, जिसमें दुबहड़ द्वीप खंड के रूप में और हल्दी द्वीप हल द्वीप के रूप में आए हैं। आखिर लोरिक चंदा की कथा भूमि और हो ही क्या सकती है। इन यदि इन दोनों उपन्यासों के जीवंत चरित्रों पर दृष्टिपात करें तो भट्टिनी भले ही शांति निकेतनी हो जाए, न्यूनिया तो ठेठ बलिया के आसपास से आने का ही आभास देती है। इसी प्रकार पुनर्नवा के सुमेर काका और चंदा को भी पहचाना जा सकता है। कहने को तो यहाँ यह तक कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी की कीर्तियों में जहाँ उच्छल भावुकता है उसे बंगाल की देन समझना चाहिए और जहाँ तेजस्विता है वह उनके अपने जनपद की विभूति है। इसी लोक जीवन की भूमि से द्विवेदी जी को हिंदी की अपनी जातीय परंपरा का भावबोध विरासत में मिला। इस भावबोध का बहुत दिलचस्प जिक्र विचार और वितर्क प्रथम संस्करण 1945 में प्रकाशित प्रेमचंद्र का महत्व शीर्षक लेख में आया है। लिखा है, मेरे एक विनोदी मित्र ने एक दिन अचानक एक प्रश्न किया। कल्पना करो, रविंद्रनाथ, शरद चंद्र और प्रेमचंद तीनों ही परीक्षा हाल में बैठे हैं। मैं प्रश्न करता हूँ, तुम परीक्षक हो, तीनों को मैं एक एक कहानी लिखने को देता हूँ। कहानी ऐसी हो जो रुला दे, पर परीक्षक को रोना हो या हंसना, उसे 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बताओ किसकी कहानी पढ़कर तुम कितनी देर रो सकते हो। मैं मानता हूँ कि सवाल बेढंगा है और किसी भी समझदार आदमी को इसका उत्तर देने में हिचकिचाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो निर्धारित समय के भीतर एक फैसला कर देना था। बोला, रविंद्रनाथ की कहानी पढ़कर 5 मिनट रोऊंगा, 15 मिनट सोचूंगा, शरदचंद की कहानी पढ़कर 17 मिनट रोऊंगा, 3 मिनट सोचूंगा और प्रेमचंद्र की कहानी पढ़कर 10 मिनट रोऊंगा, 10 मिनट सोचूंगा। यह जवाब भी सवाल के समान ही बेढंगा था, पर इस पर बात में मेरा अनुभव तो कुछ कुछ था ही। मैं स्वीकार करता हूँ कि वह सत्य मेरा अपना होगा। पृष्ठ संख्या 54 से 55। यह विनोदपूर्ण प्रसंग इसलिए उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद के माध्यम से द्विवेदी जी ने एक प्रकार से हिंदी जाति के भावबोध की उस विशेषता की ओर संकेत किया जिसका मुख्य गुण भाव और विचार के बीच संतुलन है। द्विवेदी जी की यह धारणा इतनी बद्धमूल मालूम होती है कि अपनी पहली कीर्ति सूर्य साहित्य में जयदेव, विद्यापति और चंडीदास की राधा के साथ सूर्यदास की राधा की तुलना करते हुए भी उन्होंने ऐसी ही स्थापना की है। जयदेव की राधा पूर्ण विलासवती प्रगल्भा है, विद्यापति की राधा इस दुंदी भन्न यौवना है, चंडीगढ़ की राधा चंडीदास की राधा प्रेमोन्मादनी है, किंतु सूर्यदास की राधा पूर्ण नारी है। बाल प्रेम की चंचल लीलाओं से लेकर वियोग की आंच में तपे हुए सांद्र गाढ़ प्रेम वाली द्विवेदी जी के अनुसार अपनी पूर्णता में सूर्यदास की राधा समूचे वैष्णव काव्य में अद्वितीय है। भावबोध के इस संतुलन की परंपरा प्रसंगवश द्विवेदी जी ने कालिदास और कबीर तक जोड़कर दिखलाने की कोशिश की है। जरूरी नहीं कि द्विवेदी जी की इस मान्यता से सबकी सहमति हो ही। प्रासंगिक इतना ही है कि द्विवेदी जी शांति निकेतन में रहते हुए भी हिंदी की अपनी जातीय विशेषता के बारे में अत्यंत सजग थे और अखिल भारतीय दृष्टि के बावजूद उस जातीय परंपरा का निरूपण ही उनका मुख्य लक्ष्य था। प्रसंगवश इस भ्रम का निराकरण कर देना आवश्यक है कि द्विवेदी जी की विशेषता उनके संस्कृत पांडित्य में थी। यह बात लगभग तुलसीदास जैसी है। तुलसीदास के समान ही द्विवेदी जी के संस्कृत ज्ञान में भी पंडितों ने अनेक छिद्र दिखाए हैं। स्वयं संस्कृत के पंडितों के बारे में द्विवेदी जी की क्या धारणा थी, इसे चारुचंद्र लेख में धीर शर्मा के चरित्र में देखा जा सकता है। जो थे तो बड़े गंभीर प्रकृति के विद्वान, परंतु उनका बड़ा भारी दोष यह था कि हर बात के बाद एक श्लोक ठोका करते थे और इन श्लोकों के जंगल में उनकी मूल बात प्रायः खो जाती थी। इसलिए यह बात स्पष्ट रखनी चाहिए कि अपने कालिदास प्रेम और बाणभट्ट प्रेम के बावजूद द्विवेदी जी लेखक हिंदी के ही हैं, वे संस्कृत पंडित नहीं, हिंदी के लेखक हैं। फिर भी यह विचित्र विरोधाभास है कि हिंदी आलोचना की तात्कालिक परंपरा से द्विवेदी जी का सीधा संबंध नहीं है। उनकी पहली पुस्तक सुर साहित्य देखने से नहीं लगता कि इसका लेखक शुक्ल जी की भ्रमर गीत सार की भूमिका से परिचित है, जबकि वह पुस्तक 1924 में ही द्विवेदी जी के काशी रहते निकल चुकी थी। हिंदी साहित्य की भूमिका सूर्य साहित्य की ही स्थापनाओं का व्यापक पटभूमि पर विकास है, जिसमें प्रसंग व सूर और जायसी के विषय में शुक्ल जी की मान्यताओं के सहमति परक उल्लेख और स्वयं आलोचक के रूप में शुक्ल जी के महत्व की स्वीकृति के बावजूद उनकी भक्ति की उदय संबंधी धारणा के विपरीत अपनी मान्यताएं रखी गई हैं। इसी क्रम में कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका के ही एक अंग का विस्तृत विवेचन और विकास है, जिसमें शुक्ल जी से भिन्न मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। निश्चय ही हिंदी साहित्य का आदिकाल भूमिका के ही दूसरे अंग का विस्तार है, पर इसमें शुक्ल जी की वीर गाथा संबंधी ऐतिहासिक मान्यता का स्पष्ट प्रत्याख्यान करते हुए कथानक रूढ़ियों और काव्य रूपों के क्षेत्र में सर्वथा नई बातें सामने रखी गई हैं। इस चिंतन क्रम में द्विवेदी जी जहां परंपरा से प्राप्त हिंदी साहित्य के इतिहास के मानचित्र को बदलकर एक दूसरा मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, वहीं साहित्य संबंधी एक नई मान्यताएं भी सामने आती हैं। इस प्रकार एक नए इतिहास के साथ आलोचना का एक नया मान भी दृष्टिगोचर होता है। कबीर के साथ इतिहास की एक भिन्न परंपरा ही नहीं आती, साहित्य को जांचने परखने का एक प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय बात यह है कि अपने समकालीन अन्य शुक्लोत्तर आलोचकों की तरह द्विवेदी जी न तो कहीं शुक्ल जी से आतंकित हैं न ग्रस्त, मुख्यतः शांति निकेतन काल की कीर्तियों में। इस मामले में वे कबीर के समान ही सौभाग्य से शास्त्र वंचित थे। कबीर को हिंदुओं का शास्त्र पढ़ने को नहीं मिला, तो वे द्विवेदी जी को ही हिंदी आलोचकों का शास्त्र। एक बात और है जिसमें वे कबीर से ज्यादा भागशाली थे, वे अपने निर्माण काल में काशी से दूर रहे, शुक्ल जी आदि की छाया से, इसलिए न उन्हें हिंदी की यह महान परंपरा विरासत में मिली, न इस परंपरा के खामखा उलझने की कड़वाहट ही महसूस हुई। फिर भी किसी न किसी का कहना है कि द्विवेदी जी मूलतः शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक हैं, लेकिन वे आलोचना में शुक्ल जी की परंपरा को विकसित नहीं कर सके हैं। यदि द्विवेदी जी शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि किस परंपरा के हैं, जबकि वे स्वयं अपने आप को शुक्ल पक्ष का ही मानते हैं। यदि ऐसा है, तब तो यही कहना पड़ेगा कि शुक्ल जी की कम से कम दो परंपराएं हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि शुक्ल जी में गहरे अंतर विरोध हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि द्विवेदी जी शुक्ल जी की किस परंपरा से संबद्ध हैं, तभी इस बात का निर्णय हो पाएगा कि द्विवेदी जी ने उसका विकास किया या नहीं। पहले साहित्य का सामाजिक आदर्श शुक्ल जी के धर्म लोक धर्म के प्रतीक तुलसीदास हैं, द्विवेदी जी के कबीर। भक्ति के स्तर पर बहुत कुछ समान, व्यवहार के स्तर पर एकदम विरुद्ध, यो स्वयं तुलसी कबीर का बिना नाम लिए स्पष्ट विरोध करते हैं और शुक्ल जी की इसमें सहमति है। द्विवेदी जी इस बात में तुलसीदास से भी असहमत हैं और शुक्ल जी से भी। क्या यह विरोध भी परंपरा में शामिल है? यदि हाँ, तो फिर विकास है या ह्रास? फिर भावबोध। शुक्ल जी की दृष्टि में सूर्य की गोपियों का प्रेम एकांतिक है अथवा लोक विरोधी। त्रिवेदी जी की दृष्टि में सूर्य की गोपियों का प्रेम कुल जाति की मर्यादा को तोड़ता है, इसलिए लोकवादी है। यदि यह विरोध भी परंपरा में ही शामिल है तो विकास है या ह्रास। अंत में भाषा और कला। शुक्ल जी की दृष्टि में कबीर की वाणी असाहित्यिक और उटपटांग है। द्विवेदी जी की दृष्टि में कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं और व्यंग के बादशाह। काव्य को जांचने का यह विरोधी मानदंड भी यदि परंपरा में ही शामिल है तो यहाँ विकास और ह्रास का निर्णय और भी कठिन है। अब यदि अपनी प्रगतिशील परंपरा को मजबूत बनाने के लिए किसी तरह दोनों आलोचकों को एक ही परंपरा के अंतर्गत रखने की व्यवस्था ही हो तो जरूरी नहीं कि एक ही परंपरा में दूसरे को भी रखा जाए। क्या यह नहीं हो सकता कि दो लेखक भिन्न परंपराओं से आकर प्रगतिशील परंपरा के विभिन्न अंगों को समृद्ध और विकसित करें? किंतु यहाँ एक कठिनाई आती है, जो लोग यह मानते हैं कि द्विवेदी जी शुक्ल जी की परंपरा को विकसित नहीं कर सके। वे यह भी मानते हैं कि उनकी समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ऐसा न हो सका। विरोधी विद्रोही कबीर का पक्षधर समन्वयवादी और समन्वय के आदर्श तुलसीदास के पक्षधर क्रांतिकारी क्या उलटबासी है? इस संदर्भ में द्विवेदी जी के समीक्षा में संतुलन का प्रश्न शीर्षक लेख का यह अंश प्रासंगिक है। मेरा मत है कि संतुलित दृष्टि वह नहीं है जो अतिवादियों के बीच एक मध्यम मार्ग खोजती फिरती है, बल्कि वह है जो आतंक अतिवादियों की आवेग तरल विचारधारा का शिकार नहीं हो जाती और किसी पक्ष के उस मूल सत्य को पकड़ सकती है जिस पर बहुत बल देने और अन्य पक्षों की उपेक्षा करने के कारण उक्त अतिवादी दृष्टि का प्रभाव बढ़ा है। संतुलित दृष्टि सत्यान्वेषी दृष्टि है। एक ओर जहाँ वह सत्य की समग्र मूर्ति को देखने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर वह सदा को सुधारने और शुद्ध करने को प्रस्तुत करती है। वहीं सभी प्रकार के दुराग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त रहने की और सब तरह के सही विचारों को ग्रहण करने की दृष्टि है। विचार और वितर्क तृतीय वृत्ति 1969 पृष्ठ संख्या 289-290। इस संतुलित दृष्टि के बाद भी द्विवेदी जी को समन्वयवादी कहने का अर्थ होगा दुराग्रह या पूर्वाग्रह। संतुलन समन्वय नहीं है क्योंकि यह मध्यम मार्ग नहीं है। संतुलित होकर भी कोई पक्षधर हो सकता है, यह बात वही पक्षधर समझ सकता है जिसमें आत्मविश्वास हो और सत्य निष्ठा। जिस पक्षधरता में आत्मविश्वास की कमी होती है वही दूसरे पक्ष के प्रति असहिष्णु होता है और सहिष्णुता को संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि द्विवेदी जी ने अपने क्रांतिकारी कबीर की प्रशंसा भी उनके अद्भुत संतुलन बैलेंस के लिए की है। वैसे बैलेंस के लिए कहीं उन्होंने एक समता शब्द का प्रयोग किया है और कहीं भारसाम्य। गरज के संतुलन के बावजूद द्विवेदी जी का एक पक्ष है, उनमें सत्य की समग्र मूर्ति को देखने का प्रयास है और इस विषय में किसी प्रकार के समझौते की प्रवृत्ति नहीं है। अपनी इस संतुलित दृष्टि के द्वारा ही उन्होंने हिंदी साहित्य की लोकोन्मुख प्रगतिशील परंपरा का विकास किया है।